का था, रूह वही रूह नया।
गाथा में आप सुन रहे हैं विपिन जैन के द्वारा लिखी गई कहानी सफाई पसंद। आज सुबह जब मैं सोकर उठा तो मुझे लगा कि मेरा कमरा मुझसे कुछ कह रहा है। मैंने कहा, रोज तो मैं विभा की बातें सुनता हूं, आज तुम कहो क्या कहना चाहते हो। आज वो 4 दिन से बाहर है और आज उसके लौटने का दिन है। तुम कब कब मुझे कुछ कहते हो, तुम्हें जो कहना है मैं सुनने को तैयार हूं। यह तो तुम्हें याद होगा कि विभा तुम्हें कितना जी जान से साफ सुथरा रखती है। वह हंसने लगा और बोला, वह तो मेरा ध्यान रखती है, पर तुम्हें मेरी तरफ देखने की फुर्सत कहाँ होती है। तुम्हारा लेना देना तो सिर्फ बिस्तर से रहता है, जिस पर लेटकर तुम्हें नींद और आराम मिलता है, मेरी तरफ तो नजर डालते ही नहीं हो। मैंने कहा, सीधे सीधे कहो क्या कहना है। उसने कहा, मैं क्या कहूं, खुद ही देख लो मैं किस तरह बिखरा हुआ और फैला हुआ लग रहा हूं। क्या विभाग के होते ऐसा रहता हूं कभी। मैंने उसकी तरफ भरपूर नजर से देखा, मुझे लगा वह ठीक कह रहा है। 4 दिन में ही कमरे का हाल बुरा हो गया है, सारी चीजें अस्त व्यस्त हैं, ओढ़ने बिछाने की चादरें सुकड़ी हुई हैं, चाय का कप सिरहाने रखा है, कोई भी चीज सलीके से नहीं रखी गई है, अखबार और कागज इधर उधर बिखरे पड़े हैं। मुझे लगा कि जैसे मेरे पीछे ही विभा खड़ी होकर मुझसे कह रही है, कम से कम मेरे पीछे तो घर का हाल ठीक रखा करो। मैंने कुछ देर कमरे में लगाकर सारी चीजें व्यवस्थित कर दी और झाड़ पोछ दी, फिर एक निगाह डाली तो मुझे सवरा हुआ अपना कमरा अच्छा लगा। मैं अपने किए पर मुस्कुराया, मैं भी तो सफाई पसंद हूँ, साफ सुथरा रहना और घर को साफ रखना मुझे भी अच्छा लगता है। मुझे देखता हुआ कमरा मुस्कुराने लगा, जैसे कह रहा था, चलो आज तो तुम्हें कुछ ख्याल आया मेरा, रोज ऐसे ही ख्याल रखा करो तो रार तकरार की नौबत ना आए। मैंने अपनी सफाई दी, मैं जैसे रहता हूँ साफ सफाई से ही रहता हूँ, मगर सफाई का भूत अपने सिर पर नहीं ढोता, दूरबीन लिए हुए नहीं घूमता। सफाई में भी सफाई ढूंढना मेरी आदत नहीं है, विभा की सफाई पसंदगी मेरी समझ में कभी नहीं आई। मैं तो कहता रहा हूं अपना घर है, जीने का ढंग है, अपनी आदतों और अपनी स्वतंत्रता के साथ हम घर में ना रहे तो कहां रहे। आखिर घर हमें अपनी तरह रहने की स्वतंत्रता देता है। पहले एक हमारा पुराना घर था, कोई नहीं कहता था कि हम गंदगी या कूड़े के माहौल में रहते थे। परंतु विभा जब मेरे साथ विवाहित होकर उस घर में आई तो वहां उसने सफाई की जरूरत हमें बताई और दिखाई। हमें लगा कि वाकई हम सफाई से नहीं रहते। उससे पहले दूसरे तीसरे दिन माँ और बहन मिलकर कमरे और बरामदे के फर्श धो देती थी, रोज झाड़ू लग जाती थी। उस घर के फर्श भी पुराने और घिसे हुए थे, इस घर की तरह चिकने और पत्थर के कहाँ थे, खुद ही घर की देखभाल करनी होती थी। आजकल की तरह काम वाली मेड या झाड़ू पोछा करने वाली आसानी से कहाँ उपलब्ध होती थी। हर व्यक्ति की हैसियत भी ये खर्च उठाने की नहीं होती थी, कुछ बड़े अमीर कहलाने वाले घरों में ही नौकर चाकर रखे जाते थे। विभा ने आकर सफाई की महत्ता हमें समझाई, हमें लगा कि सफाई भी एक ज़रूरी चीज़ होती है और उसकी कमी बुराई कहलाती है। उसके बाद घर में जैसे सफाई का काम रसोई से भी ज़्यादा बड़ा हो गया था। सफाई के मोर्चे पर माँ और विभा की लड़ाई भिड़ाई होती रहती थी। वहाँ ऐसे लोग थे जो घर में बेरोक टोक चले आते थे, सफाई को ध्यान में रखकर वह रुकने वाले नहीं थे। सफाई के मामले में हुई तकरार या लड़ाई में सुलह सफाई मुझे करनी पड़ती थी। फिर पुराने घर को छोड़कर नए फ्लैट में आ गए तो वहाँ चिकने और चमकदार फर्श को देखकर विभा की आंखें चमक से भर गई थी। मैंने उस चमक को देखते हुए कहा, यहाँ तो तुम्हारे पसंद की फर्श है। यहाँ के फर्श ज़्यादा घिसाई और रगड़ाई भी नहीं मांगते। यहाँ आकर काम वाली मेड भी साफ सफाई के लिए लगा दी गई थी। विभा ने मेरी बात सुनकर ताना मारा, फर्श तो चमकदार तब रहेंगे जब तुम रहने दोगे। पहले तो तुम ही सफाई के दुश्मन थे, अब बच्चे भी तुम्हारी टीम में शामिल हो गए हैं जो मेरा काम बढ़ाने में लगे रहते हैं। मेरे दोस्त जो कभी कभार आ जाते थे अब आने में झिझकने लगे थे। उनमें कुछ विभा की सफाई की सनक को अपनी बातों से और गहरा कर देते थे। विनोद तो अक्सर कहता, भाभी जी फर्श को चिकना और साफ रखना तो आपके बूते का काम ही है। हमें तो लगता है जैसे हम पांव रखेंगे तो फर्श मैले हो जाएंगे। वह तारीफ से भरकर और सफाई प्रेमी बन जाती। यह कहती कि मैं क्या करूं, मेरे किए को मटिया मेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अरे घर में सफाई रहेगी तो मोहल्ला साफ लगेगा, अगर मोहल्ला साफ लगेगा तो नगर साफ दिखाई देगा, और अगर नगर साफ होगा तो देश साफ लगेगा। हमने सफाई की संस्कृति कहाँ अपनाई है। सफाई एक कल्चर है जो सिखाए से नहीं खुद से ही आती है। तभी तो हमारी नदियां और पहाड़ मैले हो गए हैं। मुझे कहना पड़ता, भाषण तो तुम खूब अच्छा दे लेती हो, घर की सफाई के साथ मन की सफाई भी जरूरी है। उसकी सफाई पसंदगी में धीरे धीरे दकियानूसी बातें भी जुड़ने लगी थी। उसे नजर आता था कि सफाई की कमी से दुर्भाग्य भी जुड़ा है या अंधविश्वास उसकी बातों में दिखाई देने लगा था। सफाई की धुन देखकर मैंने एक पैरोडी बनाई थी, धोए जा बस धोए जा, जहां मिले जो जहां दिखे जो पानी में भिगोए जा, कपड़े धो या दुखड़े धो, जीवन के रगड़े झगड़े धो, फर्श धो या अर्श धो, हंसी खुशी विमर्श दो, धोए जा बस धोए जा। वह चिढ़कर बोली, तुम तो गंदगी के कीड़े की तरह रहना, गंदगी में ही रहना पसंद करते हो। सफाई से आदमी के अंदर की तस्वीर दिखाई देती है, जैसे खुद रोज नहाते हो घर को भी सफाई करनी चाहिए। पशु पक्षी भी साफ जगह देखकर बैठते हैं। मुझे आखिर सत्य वचन कहकर उसे चुप कराना पड़ता। काम वाली मेट तो मिल गई, उसके साथ वह खुद काम में जुटी रहने लगी। मेरी मुश्किल यही थी कि वह मेरे जरूरी गैर जरूरी कागजात सब उठाकर किसी भी जगह ठूंस देती और मैं परेशान होकर घंटों उन्हें तलाशता। सफाई की धुन कभी कभी मुश्किल बन जाती। एक तरफ कहीं बाहर जाने की जल्दी होती, दूसरी तरफ वह सफाई में जुटी दिखाई देती। चलते चलते जो चीजें सवार देना या कमरे को साफ सुथरा बनाने की इच्छा उसे देरी के तरफ ध्यान से दूर रखती थी। कई बार हमें देरी की वजह से गाड़ी निकलने की परेशानी भी झेलनी पड़ी थी। मैं उसे बार बार कहता, सफाई तो ठीक है मगर समय और मौका तो देखा करो। हर समय एक ही राग ठीक नहीं है, तुम्हारा सफाई पसंद होना कई परेशानियों की वजह बनने लगा है। इसमें छुआछूत भी दिखाई देने लगा है। सफाई ही तुम्हारी खुदाई ना बने, कभी कभी अपने अंदर की सफाई कर लिया करो, बाहर का मैल अंदर भी जमा होता रहता है। स्टेशन से विभा को लेकर लौटते हुए मेरे अंदर कमरे को देखकर विभा की प्रतिक्रिया घूम रही थी। मैं इस खुश ख्याल में डूबा हुआ था कि विभा कमरे को व्यवस्थित और साफ सुथरा देखेगी तो आश्चर्य से भरकर पूछेगी, क्या ये सब तुमने किया है? तुम्हारे जैसे कबाड़ी और आलसी आदमी को कमरे को साफ रखने की सुध कैसे आ गई? तुम्हारी आजादी में कोई खलल तो नहीं पड़ा? मैं ये सोच ही रहा था कि उसने पूछा, कमरे का क्या हाल बना रखा होगा, मुझे तो उसे सवारने में घंटों लग जाएंगे। मैंने कहा, घर पहुंचो तो बात करना। वह हंसने लगी, तुम्हारी आदतें तो मैं खूब जानती हूं। मैंने कहा, मैडम पांव के निशान तो मिट्टी में ही बनते हैं, चिकने फर्शों पर नहीं। तुम मेरे पांव के निशान भी तो कभी ढूंढोगी? वह चिढ़ी और कहने लगी, फालतू की बकवास करने में तुम माहिर हो, सिर्फ सफाई में रहना ही नहीं सीख सकते। घर पहुंचे तो उसकी निगाहें कमरे को देखकर मेरी तरफ देख रही थी। ये सद्बुद्धि तुम्हें कैसे आई? मैंने हंसते हुए कहा, तुम खुद कमरे से पूछ लो, मैंने ही इसे सवारा और साफ किया है। मैंने सोचा कि चलो आज तुम्हारी तरह ही सोचकर देखते हैं, सफाई को अपना कर देखते हैं। तुम्हें ये अच्छाई पसंद आई? शायद वह सोच रही थी कि मेरे अंदर ये परिवर्तन है, पर यह उसकी गैर हाजिरी में दिल में आया एक ख्याल भर था। जैसे मेरी आदत और पसंद है वैसे ही आगे मैं रहूँगा, और जैसा उसे पसंद है वैसा वह करती रहेगी। मुझे देखते हुए उसकी निगाहें कमरे का कोई सफाई से छूटा हुआ कोना या बिखरा हुआ सामान ढूंढ रही थी। गाथा में अभी आप सुन रहे थे विपिन जैन के द्वारा लिखी गई कहानी सफाई पसंद। गाथा में इस कहानी को आपके लिए प्रस्तुत किया था विनीता श्रीवास्तव ने।